राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 सितंबर 1993 को रात्रि लगभग 8 बजे जोधपुर में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभाग पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 जैसे आज आपने अपने धर्म के लिए अपने इष्ट के लिए उत्साह किया, ऐसा ही उत्साह आप सदा रखें। आप ऐसा उत्साह रखें तो आपका अपमान कोई नहीं कर सकता। आपके सिद्धांतों का अपमान है, बहुत खराब चीज है ये। हमारे साथ सुख हो दुख हो कुछ हो, परंतु हमारे सिद्धांतों पर आघात करते हैं वो हम नहीं सह सकते। ऐसा विचार रखना चाहिए सदा। महान अपमान, बड़ा भारी अपमान किया जो श्री कृष्ण भगवान गणेश जी की जो मूर्ति जो विग्रह है जिसका हम पूजन करते हैं उससे निकालते हैं उसको उठाकर ले गए। बहुत ही खराब काम किया ये, बहुत बड़ा अपमान किया है। उसके लिए आपने जो किया बड़ा अच्छा किया। आगे ऐसा भी कहीं भी जो धर्म का अपमान करे तो उसका फल उनको चखा देना चाहिए। और आप ऐसे रखो तो आपके सामने कोई शक्ति आपका ऐसा इष्ट का अपमान नहीं कर सकेगा। बिल्कुल आप हिम्मत हारे हुए हैं, आप में शक्ति सब मौजूद है।
ऐसा ही शक्ति प्रदर्शन वोट देने में करना चाहिए।
हाँ, ऐसी ये करनी चाहिए। बताऊं क्या आपको, ख्याल करें आप किसी लोभ में किसी मोह में आ करके और अपने धर्म का त्याग करना उपेक्षा करना बहुत खराब चीज है। जैसे आज उन जो गणेश जी का अपमान किया उसके विषय में आपने कहा, ऐसे ही गोमाता का महान अपमान क्या खतल कर रहे हैं और बड़े बुरी रीति से कर रहे हैं। कतल भी करना भी बड़ी बुरी रीति से, जल्दी अगर मार दें पर तो उसमें खून कम निकलेगा, इस वास्ते उनको पड़ी गवन जो आधा आधा गड़ा काट करके पड़ी रहने, जिससे जीती रहे तब तक उसका खून निकलता रहे, मरने के बाद खून का जब पानी हो जाता है ज्यादा, इस वास्ते जीती रहे वह खून निकलता रहे, इस वास्ते आधा गड़ा काट काट कर छोड़ देते। गर्म पानी से खड़ी करके गर्म पानी का फुहारा दे जिससे वो बेचारी जल उठे एकदम, ऐसे जीती जीते का चमड़ा उतारते हैं, वो चमड़ा नरम होता है। ऐसी सुनी है मैंने कि मशीन में खड़ी करे जिसमें ऐसी वेदन चढ़ा चढ़ा बच्चों के लगती है, जो कि कोई भी खाली न रहे सब्जी के मार पड़े बेतोरी जिसे रुए उड़ जाए, ऐसी हालत में उसके जीती का चमड़ा उतार लेते हैं जिससे वो चमड़ा नरम होगा। ऐसी रीति से कहीं करते ये तो राज की रीति है। और एक रीति सुनी कि एक बड़ा मकान है, उस मकान में गऊ देते हैं तो सड़क ऐसे नीची रखी हुई तो उसमें जाते ही बड़ी तेजी से भीतर प्रवेश हो जाए, वहां हाँकनी नहीं पड़े और बीच में इकट्ठी हो जाए तब ऊपर ऐसे गर्म पानी का प्रयोग करके मारी जाती है। अहमदाबाद में मुसलमान लोग मार हो जाती है तो वर्षा में जो जानवर के ऊपर पानी बरस जाता है उसका भी मांस बढ़िया नहीं रहता है, खराब हो जाता है। इस वास्ते उनको क्या करते हैं कि मुंह में लकड़ी ठोस करके और घाम में शीत में पड़ी रहे तो दो तीन दिन ऐसी पड़ी रहने से उसका मांस बढ़िया हो जाता है, इस तरह करके उनको मारते हैं। ऐसे गौ की हत्या किसी तरह से करते हैं, ये बात हमने सुनी है। तो ये बड़ा भारी अपमान है। भारतीय विधान में हमने सुना कि किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, मारना हो तो पटा से मार देना चाहिए, उसको तकलीफ रहने नहीं देनी चाहिए, ऐसा भारतीय विधान में हमने बात सुनी है। मैंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, पर बात सुनी है कि जीव को ऐसा कष्ट देना नहीं चाहिए, उसी से विरुद्ध ये काम करते है ऐसा। ये सब हम लोग सह लेते हैं और उन्हीं को वोट देते हैं, उनको ही अब बड़े अफसर बनाते हैं, मालिक बनाते हैं, वे शेष संसार इसके जगत के कर्णधार, अपने देश के कर्णधार बनते हैं मुखिया। तो इस हत्या में अपनों शामिल होता है, इस वास्ते अपने को सावधान रहना कि ऐसा वोट नहीं दे रहा है, वो हत्यारों को वोट देना ही नहीं है। जो संस्था को हत्या करती है उनको वोट देना नहीं चाहिए, हमारे धर्म से विरुद्ध काम कर रही गो हत्या कर रही है और इसका नतीजा भयंकर भोगना पड़ेगा, वो बच सकते नहीं, परंतु अभी अंधे हो रहे हैं, पता नहीं है उनको, नतीजा उनके सामने आ रहा है। रुपया दे दे करके किस तरह से जी रहे, रुपया देकर बोर्ड लाखों रुपया करोड़ों रुपया दे दे करके और बोर्ड देकर जीत जी रही है, ये अंतिम श्वास आ रहे हैं तो खत्म होगा। नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माफ है अवगुण करो हजार। जब तक तुम्हारे पूर्व भाग का अंत नहीं आ गया है, वो अच्छा भाग है जिसका, तब तक अवगुण कर लो, परंतु ये खत्म होते ही जो अवगुण के इनकी बारी आएगी तब देखना दिखा होगी। ऐसे ऐसी हत्या करने वालों को वोट देना है, महान पाप का भागी बनना है और अपने धर्म का और अपनी जाति का अपने वंश का महान तिरस्कार करना है। जैसे अपने इष्ट देव का तिरस्कार किया तो आज आपने विचार किया तो आपको विजय हुई, ऐसे हिंदू सब तैयार हो जाए तो मजा ले आपकी, मखौल उड़ाओ आपके धर्म की, आपके धर्म का इतना तिरस्कार करे, अपमान करे, परंतु आप उसमें सहमत हो जाते हैं तब ये दशा होती है। इस वास्ते आपको सचेत रहना चाहिए, बहनों माताओं को चाहिए कि अपने पति पुत्र आदि को सबको समझा दें, ठीक करें, नहीं तो भाई हम करेंगे। बिदुला थी, बिदुला उसका संजय लड़का था, फौज आ गई विपक्षियों की तो उसने फौज को देखकर वो डर गया, भीतर घर में आ गया तो बिदुला ने कहा कि तू डरपोक ऐसा डर के आ गया, तू बैठ जा भीतर में, ओट ना ओट करके मैं जाऊंगी युद्ध करने के लिए। बड़ा जोर से कहा तो कहा ठीक है, माँ के कहने गया जो विजय कर गया वो। तो ये माँ की शिक्षा बड़ी विचित्र होती है, इनमें शूरवीरता है। कौरव और पांडव का युद्ध हुआ उसमें भी माँ का ही काम हुआ, ये माँ ने किया। वेदव्यास जी ने कह दिया कि युधिष्ठिर तेरे निमित्त से युद्ध होगा, उसमें क्षत्रियों का संहार हो जाएगा, बहुत क्षत्रिय मर जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, ऐसा कह दिया था। जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए और पीछे लौट कर आए तो वहां माँ से मिले थे, कुंती माता थी शहर पर, पांचों भाई और द्रौपदी ये जंगल में रहते थे वनवास में, कुंती माता वहां पर रही तो वहां विदुर जी के पास रही वो, विदुर जी थे यो देवर, परंतु तो माँ की तरह मानते थे, बहुत आदर करते थे। वहां रही, वहां वो राजधानी में नहीं रही, विदुर जी घर पर रही। उनको ये बात स्वाति नहीं थे कि अन्याय कर रहे हैं, अन्यायियों का अन्न खाना उठना ठीक नहीं है। और धृतराष्ट्र ने, उसकी स्त्री ने विशेष आदर नहीं किया कुंती का। जब भगवान प्रस्ताव लेकर गए संधि का, उन्होंने ठुकरा दिया, तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। और जब भगवान व्याख्यान दे रहे थे, व्याख्यान सुनने के लिए ऋषि मुनि गए, जो बीच में मिले थे, भगवान रथ से उतर कर सबको प्रणाम किया, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका व्याख्यान होगा, वहाँ सुनने को जा रहे हैं। वहाँ व्याख्यान तो राजकीय होगा, कोई तात्विक विवेचन थोड़ा ही होगा, परंतु वे ऋषि कहते हैं कुछ भी विवेचन हो, कहने वाला कौन है, इस वास्ते हम तो उनका व्याख्यान सुनने को जाएंगे। ऐसे कहे थे। वह सभा में जब भगवान व्याख्यान दे रहे थे संधि का प्रस्ताव करके, तुम्हारे में कौन तैयार हो जाए जो अर्जुन और भीम के सामने युद्ध कर सकेगा, टिक नहीं सकोगे, मर जाओगे, ऐसे कह रहा था। उस समय दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी, ये चार आदमी मिलकर सलाह कर रहे थे। इनको पांडव यश इंदु चंद्रिका में चंडाल चौकड़ी कहा है। ये चार आदमी थे चंडाल चौकड़ी। तो उन्होंने वहां विचार एकांत किया कि कृष्ण अभी कब्जे में आया हुआ है, इसको पकड़ करके कैद में डाल दो, फिर ठीक ठंडे हो जाएंगे पांडव सब के सब। इनमें सबके काम, ये कुबेर करने वाला, ये खराब काम करने वाले कृष्ण है, दुर्योधन की ऐसी भावना थी। इस बात वो सलाह कर रहे थे कैसे माने कैसे नहीं। ये बात थी तो अपने ये गुप्तचर सब जगह रहते हैं, ये साथी को पता लगा कि ये ऐसा विचार कर रहे हैं, तब उसने आकर कहा आप तो कह रहे हो व्याख्यान दे रहे हो और आपके लिए सांकड़े तैयार हो रही है कैद खाने में ले जाने के लिए। भगवान ने उस समय मेरे को कौन है बांधने वाला, मेरे को कैद करने वाला कौन है, वो मेरे सामने आई जोर से बोले तो वे भीतर से जारी अपनी बात कर रही, वो तो बात फूट गई, वो पता लग गया। तो बाहर आए, बाहर आते दुर्योधन तू चाहता मेरे पकड़, देख मैं कौन हूँ, ऐसे किया महाराज विराट तू मूर्छित हो गए। भिषा भी विदुर जी, भीष्म जी, द्रोणाचार्य और विराट रूप की स्तुति करने लगे। महाराज आपका रूप ऐसा है, ऐसा विराट जिसमें अंग में छोटे 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 सब जितने जीव जंतु मनुष्य वो कौरव पांडव सब उसके अंतर्गत दिखते हैं। पकड़ो मेरे को कौन पकड़ने वाला है, ऐसा कहकर फिर विदुर जी का हाथ पकड़कर छाती को लेकर भगवान बाहर निकल गए। तो इसलिए ऐसे भगवान ने वहां विराट रूप दिखाया, मेरे को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ो कौन है आओ मेरे सामने, मूर्छित हो गए वे। तो इनकी ऐसी रूप संदेह थी। फिर इसे मिलकर विदुर जी के साथ रात में रहे। विदुर जी ने कहा कि महाराज आपको आना चाहिए था नहीं, ये दुर्योधन मांगने वाला है नहीं। भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं उस बात को, वो मेरी बात नहीं मानेगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जिसे युद्ध न हो। कहते ये दुष्ट स्वरूप दुष्ट स्वभाव वाला है, आपको स्वीकार नहीं करे, कम से कम आपको नहीं आना चाहिए था, कोई और आ जाता आदमी ठीक है, आप कह वो कार्य सिद्ध नहीं हो, ये ठीक नहीं है आपके लिए। भगवान कहे विदुर जी मैं जानकर ही आया हूँ, मैं चेष्टा करूंगा मानवीय शक्ति से, अगर ये युद्ध कर जाए तो 18 अक्षोहिणी सेना के उपाय बचाने का पुण्य का भागी होऊंगा, और वे मर जाएंगे तो भी मेरे को तो पुण्य ही होगा, क्योंकि मैं युद्ध टालने की चेष्टा कर रहा हूँ। ऐसा कहकर फिर मिल करके जाने लगे। तो माता कुंती से मिलने के लिए गए। माता कुंती से मिलने के लिए तो माता ने कहा कि आप युधिष्ठिर से कह देना, भीमसेन से, अर्जुन से, नकुल सहदेव से कह देना कि जिस दिन के लिए क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है वो तुम्हारा दिन आ गया है, इन दुष्टों को मारो, अब कोई पर कृपा करने की जरूरत नहीं। ये तो धनंजय वाच्यो निचोद्रुक्तो भृगोदर यदसं क्षत्रिय सूते तस्य कालो हिमागत, वहां का श्लोक है। ये कहते हैं कि ऐसे तुम अर्जुन से कह देना और नित्योद्युक्तो भृगोदर, भीम से तो हम हर समय कमर कसे ही तैयार रहता है युद्ध के लिए, उनसे भी कह देना कि जिस दिन के लिए प्रयोग शत्रानी पैदा करती है वो दिन आ गया, इन दुष्टों को मारो, युद्ध करो। ये माँ के हुक्म के कारण से ही महाराज युधिष्ठिर ने युद्ध किया है। अगर माँ नहीं कहती तो युद्ध नहीं करते। और माँ के दुख था किस बात का? दो बात का दुख हुआ उनको। वे राज्य की भूखी नहीं थी माँ कुंती, युधिष्ठिर की माँ, युधिष्ठिर धर्मराज की माँ थी वो, कोई मामूली चीज नहीं थी। तो उसके दुख दो बात का था। एक तो मेरी पुत्र वधु बिल्कुल शुद्ध निर्मल जो द्रौपदी है उसका सभा के बीच में तीर खींच करके नग्न करना चाहा, ये दुष्टों की दुष्टता महान हद तक पहुंच गई, ऐसे दुष्टों को तो मारना ही चाहिए। दूसरा मेरे कन्हैया को भी करना चाहते कैद, ये दो महात्म कुंती से सहा नहीं गया। तब उसने कहा दुष्टों को मारो अभी को, वो राज्य की भूखी नहीं थी माँ कुंती। इस तरह से बहनों माताओं को चाहिए कुंती को याद कर ले, और इस तरह से सूर वीरता रखे तो आपको कौन कर सकता है आपका अपमान? ऐसी आप में शक्ति होनी चाहिए तो ऐसी आपको सूर वीरता दिखानी चाहिए। कह दे क्या मारपीट कर ले, कोई कुछ कर ले, कर लेगा, क्या कर देगा आपका? कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। द्रौपदी ने अपने धर्म का कभी त्याग नहीं किया, धर्म को काम में नहीं लिया, अपने शक्ति का भी प्रयोग नहीं किया। गांधारी ने कहा धृतराष्ट्र से आपने जो इतना अपमान किया है, एक शब्द कह देगी आप कुल का नाश हो जाए, जल्दी इसको राजी करो, नहीं तो आपके कुल की खैर नहीं है। आप समझते नहीं है पतिव्रता में कितना तेज होता है, उसका पता नहीं है। बड़े धृतराष्ट्र को जोर से धमकाया है। तो पतिव्रता स्त्री को पति को कहने का भी अधिकार है। जिनसे आंखें बांध ली, कितनी ऊंची पतिव्रता जो इतिहास में भी एक विलक्षण बात रखती है और देखने में नहीं आता है। जो पति अंधा है तो आंखों की पट्टी बांध ले, इतना पतिव्रत मानने वाली ने कहा है कि आप समझते नहीं उस बात को, जल्दी राजी करो। फिर द्रौपदी को बुलाया, फिर राजी किया है कि बेटी तू मांग जो चाहे सो मांग। तो उसने कहा पिता हो ससुर हो मेरे ये धर्म के पास से छूट जाए, ये बंधे हुए धर्म से है, ऐसे बंधने वाले है नहीं मेरे, आप से कोई काम कर लेंगे, ये दास भाव से छूट जाए। आप कहो तो दास नहीं है, वो दास बना दिए थे, दास भाव से छूट जाएगा, दे दिया वरदान। और वो मेरे पुत्र उनको कोई दास पुत्र न कहे कि दास पुत्र है ये, कि नहीं कहेगा। और हम अपने राजधानी में चुपचाप चले जावे, ठीक है। और मांग कि मैं मांगने वाली नहीं हूँ, क्षत्रानी हूँ मैं नहीं चाहती हूँ, और मांगने की जरूरत नहीं है, वे धर्म में बंधे हुए हैं, इस वास्ते प्रतंत्रता वो छुड़ा दी मैंने, अब वे अपने बल से आप साफ कर लेंगे, मेरी सहायता को जरूरत नहीं है, ऐसे निर्बल नहीं है हमारे पति। इस तरह से दुख से कहा, तो ये धर्म का अपमान है, ये कुंती से सहा नहीं गया, अपने पुत्र वधु का इतना सभा के बीच में नग्न करने की चेष्टा करी, कितनी एक घृणित चेष्टा है, वो माँ से नहीं सही गई। तब कहा दुष्टों को मारो, तो इसमें माँ कुंती का वचन मुख्य रहा, नहीं तो युधिष्ठिर युद्ध करने वाले नहीं थे, माँ के वचन को टालते नहीं थे। पांच पति बन गए माँ के वचन से ही, ऐसा माँ का आदर करते थे। तो मातृशक्ति हो आप, मामूली नहीं हो आप, विचार करो कभी आप निर्बल मत मां समझो। अब आप कहते हैं परंतु आप प्रबल हो, बड़े बड़े देवता भी महाराज पृथ्वी पर गिर गए आपके कारण, सूर्य उगड़ा बंद हो गया आपके तेज से, इस वास्ते आप सूर वीरता अपने में रखो, जो कौन आपका अपमान कर सकता है, आज ठीक आपने किया। तो इसे आप सज्जनों को भी चाहिए कि ऐसा कोई धर्म का अपमान करे, ये बार बार अपमान ऐसे करते हैं और आप सहते रहते हो, इस वास्ते ये दशा हुई है, नहीं तो आज दशा नहीं होती। आज ये हिंदू अगर एक हो जाए, ये धन का लोभ न रखे, ये गुलामी को अगर असह्य समझे, तो आपकी विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल आपके इस कायरता के कारण से यह दशा हो रही है, और अगाड़ी भी क्या जाने क्या दशा होगी। ये गुलामी है मुसलमानों की जो वे रखते हैं, रखेंगे है, क्योंकि वे एक होकर के वोट देंगे, जो वोट देंगे उसे देंगे, लेकिन इस बात से उनका लोभ है वोटों का, इस लोभ से कारण से ये हो रहा है। नरकों का दरवाजा तीन बताया, काम क्रोध और लोभ। अपने संजय को पहले राजगद्दी मिली है हिंदुओं के वोटों से, पीछे वे मुसलमान गर्ज करी है, हिंदुओं के वोट से उनको विजय मिली थी। तो ऐसे हिंदू सब मिल जाए साथ में तो सब काम ठीक हो जाए, पर ये लोभ सताओगे धन हमारे को धन मिल जाए, ये धन के लोभ ने ये काम किया है, तो आप ऐसे मत फंसो इन बातों में और एक हो जाओ इस विषय में तो आपकी विजय निश्चित है, संदेह नहीं। आज आपने करके बताया, ये तो अनुभव हो गया ना, आप एक हो जाओ तो कैसी विलक्षणता आपने करी आज, तो इस तरह से अपने में एकता का सदा ही पाठ पढ़ पढ़ता रखो, सूत्र से सदा तैयार रहो उत्साह से। उत्साह आदमी के लिए कठिन काम भी शुभ हो जाता है, कठिन कुछ नहीं है, इनमें ताकत नहीं है। पाप करने वाले में ताकत नहीं रहती, अन्याय करने वाले में शक्ति नहीं रहती। रावण भी सीता जी की चोरी करने के लिए गया है, इधर उधर श्वान की नहीं कुत्ते की तरह इधर देखता है, डरता है, जैसे नर नारी सब डरते थे वो कौन डरता है। पाप करने वाला का हृदय खोखला हो जाता है और पाप नहीं निर्धक होता है, हृदय उसका सूर फिर होता है, तो कोई हमने पाप किया ही नहीं, हमें कसूर किया ही नहीं है, फिर डर किस बात का, निर्धक रहे निसंग रहे भाई बहन, अपने तैयार रहे इस तरह से, अपने अन्याय करते नहीं और हमारे पर अन्याय करे अत्याचार करे। गणेश जी उठा कर ले गए मूर्ति को, जिनको हम आदेश देते हैं करते हैं उसे उठा कर ले गए। अगर उनमें कुछ होश हो और कुछ ज्ञान हो तो जो मूर्ति उठाने वाले हैं उनको खुद को दंड देना चाहिए, कलेक्टर को चाहिए कुछ दंड देवे, जिसने तुम्हारी आज इतनी बेइज्जती फजीती की है मूर्ति उठाने वाले ने, तो उसकी खबर लेनी चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, उचित समझे तब तो ये बात है, क्योंकि उसके कारण से ये सब मामला हुआ है, तुम्हारी फजीती हुई है, तुम्हारा रिकॉर्ड बिगड़ा है, बिगड़ा किस कारण से, उस कारण से, तो उसको अपने रखना ये बड़ी भारी अन्याय की बात है। और हम तो कहते हैं कि कायरता की बात है, ये उनको ठीक समझ लेना चाहिए, खुद को विचार करना इस विषय का। तो आप लोगों ने बहुत ठीक किया, अगर ऐसे ही तैयार रहे आप लोग तो हमारे चित्र में बड़ा संतोष होगा। इस तरह से अपने परिवार निवेदन की बात ध्यान नहीं देते हैं, कितना अन्याय कितना अनर्थ हो जाएगा, हम दो हमारे दो 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 होते हुए मरे वो सदा खुले, अत्यंत अभाव आपके वंश करने का ये षड्यंत्र है, हमने सुना था, पक्का पता नहीं मैंने सुना, मैंने जरूर है, इसमें संदेह नहीं है, और इसका देख रहे हैं तो ये बात रहती है। एक जयपुर में तो यहाँ तक हो गया कि एक संतान हो, दूल्हा दूल्ही बने तो उनको जाहिर कर एक संतान हो बस, तो आधे हो जाए फिर भर मर जाएंगे, 100 वर्षों के अंदर तो मर जाएंगे। जयपुर में लड़का लड़की जो कुंवारे है वो गिने गए, उन गिनने में लड़कियां हो गई 2000-3000, लड़के 3000 2000 लड़कियां, इसका अर्थ क्या हुआ, 1000 लड़के कुंवारे रहेंगे तो सृष्टि कैसे मरे गई, तो लड़कियों गई गर्भपात करने में कितना अनर्थ हुआ है और कितना अनर्थ होगा। और दहेज प्रथा में तो लोभ ही तो है, दहेज प्रथा नहीं है मेरा जिसमें वो एक कारण नहीं है, लड़के जन्मते हैं वो स्वाते नहीं है। मेरे को आश्चर्य आता है, आप मातृशक्ति हो, मातृशक्ति का ही आप नाश करते हो, स्वयं उसको पढ़ने नहीं देती, उसे तिरस्कार करती हो। कन्यादान का महान पुण्य है, जितने दान पुण्य में कन्यादान जो अगाड़ी वर्ष वृद्धि करने वाली कन्यादान है, इतनी ऊंचे दर्जे की चीज है, वो कैसे करोगे, मार दोगे उसको, गर्भपात कर दोगे, अरे गर्भपात करना बड़ा भारी पाप है, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप, जैसे दुगुना पाप पराशर स्मृति में लिखा है, यह पाप ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात नहीं, ऐसा पाप ऐसी हत्या करो, इसी से आपके बुद्धि नीच हुई है, बुद्धि भ्रष्ट हुई है, आप में सुवीरता नहीं रही है, पापी आदमी की सुवीरता नहीं रहती, तो आप इस सावधान रहे और आप सर ये विशेष प्रचार करते कर ले, तू ही ऑपरेशन करा ले, तू ही करा लेने, ऐसा नहीं, उल्टा के नहीं करना चाहिए तुम्हारा, मैंने गलती करी, तुम गलती मत करो। अभी नागौर में बात हुई, मैंने व्याख्या दिया जिसमें एक आदमी बड़ा भयभीत हो गया कि महाराज हमने ऐसा कर लिया, मेरी स्त्री को मैंने ऑपरेशन करा लिया, क्या मैं दूसरा ब्याह कर सकता हूँ। मैं भी ब्याह शास्त्र की रीति से संतान के लिए करते हैं ब्याह, मांगे पिंड पानी देने वाला हो, सात रीति से कोई निषेध नहीं है, तो क्या कोई पाप तो नहीं हो जाएगा? वो पाप नहीं होगा। स्त्री पहली वाली जिसका अपमान तो नहीं होगा, वो स्त्री को चाहिए कि भाई मैंने भूल कर दी, अब तुम दूसरा ब्याह करो। उसने प्रेरणा करनी चाहिए, उसको बाधा नहीं देनी चाहिए, ऐसा दिया मैंने समाधान। तो ये दशा है, इस वास्ते आप सोचो। और भाई ने यहाँ कई सुनाया कि कई घर ऐसे है, मैं जानता हूँ, मैंने तो उनसे कहा तुम ऐसे नाम लाओ दो चार मेरे पास में, तो कि मैं दूंगा। गांव में दो छोरा और छोरा छोरी रहे, वे मर गए, बूढ़े हो गए, पानी पाने वाला आदमी नहीं है उन्हें, मरना तो सब सबका है। मुसलमान भी मर गए, जैसे मैं कहते 19 18 रहे, एक मर गया उनका भी, सबके मरे गए। अब कोई मर गया, एक दो मर गया, हम गए तो दक्षिण में वहां पर एक यहाँ महाराज ईश्वर को आशीर्वाद दे दो, जीता रहे। दो छोरा थे, एक को तो पागल कुत्ता खा गया, मर गया, ये मर नहीं जाएगा। अब पहले तुम कुकर्म करते हो, फिर कहते हो जीता रहे, आशीर्वाद कैसे, आशीर्वाद कैसे दो? तुम्हारे को तो साफ मिलेगा, आशीर्वाद कैसे मिलेगा? ऐसी दशा होगी। दशा क्या होगी आपकी? कौन आज फौज में भर्ती होंगे, ज्यादा होंगे फौज में भर्ती होंगे, तो आप क्या दशा होगी? कहते अन्न कहाँ से खाएंगे? अन्न तो आप दो ही संतान हो तो अन्न खेती करेगा कौन? बहुत जमीन आपके भारतवर्ष की, राजस्थान की बिना खेती के पड़ी हुई है, तो मनुष्य न होने से खेती नहीं करते, ज्यादा होने से खेती ज्यादा करते, अनाज इतना हो जाए आप खा नहीं सको, इतना अनाज होगा। और कहते मर जाएंगे तो अन्न क्या खाए, मन अन्न तो पैदा हुआ वही है। तो इस बातों से कायरता आप मत लाओ, शोध भीड़ता रखो, जैसे काम ठीक होगा। नारायण 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 नारायण। पारमार्थिक उन्नति करने से सब तरह की उन्नति होगी। हम यहाँ से कहीं गांव जाते हैं तो बीच में जो गांव आता है वहां का ही, अगर जैसे हरिद्वार से हम ऋषिकेश जावे और बीच में तहसीलदार है, राय वाला आता है, तो राय वाले ही जाएंगे तो ऋषिकेश बीच में नहीं आएगा, पर ऋषिकेश जाएंगे तो राय वाला बीच में आ जाएगा। हम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का रखे तो लौकिक उन्नति उसके भीतर आ जाएगी, लौकिक उन्नति का रखे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होने से बीच के सब काम ठीक हो जाते हैं। गीता का विचार कर उनके अनुसार जीवन बनाने से बहुत विलक्षण विलक्षण बातें आती है सामने, मैंने देखा है, आप भी देख सकते हो सुनते हो, ऐसी विलक्षण बात है। तो उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का रखो, तत्व ज्ञान का रखो, भगवत प्रेम का रखो, भगवत दर्शन का रखो। ऐसी ऐसी विचित्र बातें हैं, मैं क्या कहें, कोई ख्याल करके सुनने वाला नहीं है, कोई विचार करके जिज्ञासु ऐसा जिसके भीतर में तड़पण वो नहीं है। आप थोड़ी सी वेदांत की बातें सुन करके उनको याद करके समझ लेंगे यही ज्ञान है, ये बड़ा भारी भ्रम है, ये बड़ा धोखा है, ये पंडिताई की बनाई हुई पुस्तकों से तत्व ज्ञान नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। वास्तव में अनुभव पूर्व जैसे भागवत है, जैसे उपनिषद है, इनका आप ब्रह्म सूत्र है मूल, उनका विचार करो तो आप बोध होगा। ये अभी जो आधुनिक बनाए हुए ग्रंथ है इनसे तत्व ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बनाने वाले केवल विद्या के जोर से बनाए हुए हैं, अनुभव इनके साथ में नहीं है। अनुभव उद्योग अनुभव का पुट अलग ही तरह का होता है, जैसे बंदूक छूटती है उसमें गोली होती है तो चोट करती है, नहीं तो बहुत बारूद से शब्द तो बड़ा भारी होता है, पर चोट क्या करे, गोली है ही नहीं भीतर। ऐसे केवल विद्वत्ता से बनाए हुए ग्रंथ में वो ताकत नहीं है। मैंने देखा है, मैंने सुना है, सोचा है, ये तीन बातें हैं। इस वजह से मैं साफ साफ कहता हूं, आप विचार करें थोड़ा सा तो बड़ा ध्यान दे तो ठीक होगा, ये तो आपका बहुत पतन होगा, उस तत्व को जानने से होगी। मैं कहता हूँ तत्व ज्ञान जैसा सुगम काम है, ऐसा सुगम काम कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं कोई हो सकता ही नहीं। चारों बातें हैं, सबसे सुगम ये बात है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है। इस शरीर से अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो मानव शरीर निरर्थक होगा। गीता की दृष्टि से आप सबके सब तत्व ज्ञान के भक्ति के अधिकारी हैं, आप सब अधिकारी का बढ़ने का अधिकारी ऐसा ऐसा होता है। गीता क्या कहती है, अभिचेत सुदुराचारो भजते मान। सुदुराचारी दुराचार्य में महान दुराचारी वो भी साधुर्य में क्षिप्रम भोज परमात्मा परमात्मा भक्त दोष होता है। ज्ञान में बताया है आप संस्कृत थोड़ा देखें तो क्या करूं मैं कैसे कहूं। अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमा। व्याकरण समाप्त हो गई है, व्याकरण पूरी समाप्त हो गई सागरी, व्याकरण में शब्द नहीं है। अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापेभ्य, पापेभ्य में सर्व शब्द पड़ा हुआ है, पापेभ्य कहते हैं सर्व शब्द आ जाता है भीतर, उनसे सर्वेभ्य का है। और पापकृत और पापकृतर और पापकृतम, एक से पापी ज्यादा वो पापकृत होता है, पाप करने वाला पापकृत, और दो में एक होता है श्रेष्ठ वो पापकृतर, और सबसे श्रेष्ठ से वो पापकृतम होता है, तमप होता है, तम इष्ट अतिशाय ने तम इष्टन अत्यंत पापी जिससे बढ़कर वो पापी हो नहीं सकता। अपचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्रवय नहीं हुआ, उसको भी तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्व ज्ञान के लिए तो अंतःकरण शुद्धि होनी चाहिए। बात ये अच्छी हरिता ग्रंथों में कई जगह मिलती है, पर मैं किसको कहूँ मेरी बात, कोई सुनने वाला हो ठीक जिसकी बात को जानना चाहना तो बताऊ मैं। अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना आपका ज्ञान नहीं होता, महान अंधेरे की बात है ये। क्या तत्व ज्ञान कर्म से होता है? अंतःकरण से तत्व ज्ञान होगा? जड़ता के सहारे चिन्मयता का ज्ञान होगा? जड़ता की सहायता से चिन्मय का ज्ञान होगा? जड़ता के त्याग से चेतन का ज्ञान होगा? अंतःकरण कैसा ही रहे, कर्तृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए। उसमें कर्म क्या काम करे, जो सब कारकों में कर्ता, कर्म कारण संप्रदान अपादान छह कारक है, छह कारकों में सबसे स्वतंत्र कर्ता कार्य क्रियायाम स्वातंत्र विपक्षितो अर्थ कर्ता होता है, तो कर्तृत्व अभिमान नहीं है, वहां कर्म कैसे रहेगा? कर्तृत्व अभिमान सबसे मुख्य है, वो ना सुनने से तत्व बोध होगा, फिर अंतःकरण शुद्ध होने से होगा, तो अंतःकरण से शुद्ध होने से क्या क्या होगा? ख्याल करके मेरी बात को खूब सुने और इस बात को गहरा उतर करके समझे। कारक जितने हैं क्रिया की सिद्धि में होते हैं, क्रिया और परमात्मा तत्व क्रिया से रहित है, क्रिया और वस्तु है दो प्रकृति है, जितनी क्रिया ये क्रिया और वस्तु ये शरीर दोनों से अतीत तत्व है, तत्व क्रिया के अधीन नहीं है, वस्तु के अधीन नहीं है, तब तो सत्य है ये असत्य है, पदार्थ और क्रिया सब नष्ट होने वाले हैं, और कारक छह के छह ही कारक क्रिया की सिद्धि में है, क्रिया करने में काम आते हैं, क्रिया से अतीत कोई कारक जा नहीं सकता, फिर अंतःकरण शुद्धि भी नहीं हुई, अंतःकरण शुद्धि क्या काम करेगी वहां? आज तो ये हुआ आपको, परंतु आपने देखते ख्याल अध्ययन आपने किया नहीं, अब क्या करूं मैं, कैसे बताऊं? अंतःकरण अशुद्ध देशवाद नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध होने से क्या हो जाएगा? हाँ, अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता है, अंतःकरण शुद्धि से शुभेच्छा होगी। ये ज्ञान प्रथमा बताई है, ज्ञान भूमि शुभेच्छा का प्रथमा प्रकृतिता तृतीय शुद्धि तृतीय सप्ताह प्रतिशतर्थी असंशक्ति पंचमी, ऐसे सात भूमिकाएं है। तो अंतःकरण शुद्ध है, जरूर है शुद्ध, पर अंतःकरण मेरी बात को खूब ध्यान देकर आप सुने, कर्ण से क्रिया सिद्धि होती, कर्ण से काम होता है, तो कर्ण क्या होता है? साधक तमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारी का नाम कर्ण होता है। रामेण बाणेन हतो बाली, बाण से बाली मारा गया तो बाली का मरना जिससे सिद्ध हो जाए उसका नाम है कर्ण, तो बाण कर्ण हुआ। तो ऐसे कर्ण पहुंचता है क्या परमात्मा तत्व तक? तो ये कारकों के त्याग से तत्व की प्राप्ति होगी, कर्ण के द्वारा कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। ठीक वेदांत पढ़ा हुआ तो इस बात को समझता है। अब मैं क्या कहूँ आप, बिल्कुल भ्रम की बात है ये। कर्ण विषय काम क्या करेगा? कर्ण ये पहले ठीक है, परमात्मा की तरफ चल रहे में अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, नहीं तो चाहिए नहीं होगी। पर तत्व ज्ञान में कर्ण वो शुद्धि है ही नहीं, संभव ही नहीं है, खूब सोचना विचार लेना, तो पढ़े लिखे हो उनको तो समझ में आ जाएगी, दूसरों कैसे मैं समझाऊं। जब कर्ण के अधीन आपको तत्व की प्राप्ति है तो कर्ण जड़ है कि चेतन है ये समझो आप, तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ के त्याग से चिन्ह में तत्व की प्राप्ति होगी, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। पहले काम किए सब, शरीर भी काम का है, इंद्रिय भी काम की है, अंतकरण भी काम का है, इनकी शुद्धि भी काम की है, बहुत उपकारी बात है। पारमार्थिक चलने वालों के लिए बड़ी शुद्धि की जरूरत है, परंतु तत्व ज्ञान कर्ण से होता है क्या? ये खास बात आप सोच लेना, पूछ लेना से विद्वानों से कि कर्ण से तत्व ज्ञान होता है क्या? कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण इच्छा कार्य है, ये कार्य सबके सब क्रिया सिद्धि में है, संबंध कारकों में नहीं है, क्योंकि संबंध क्रिया जनकत्व कारकत्व कारक होता है, क्रिया जनक होता है, क्रिया जनक होता है, क्रिया से अतीत तक कार्य कोई पहुंचता ही नहीं, पहुंचता नहीं, पहुंच सकता ही नहीं। थोड़ा पढ़ा व्याकरण जानता वालों वो बात समझ सकता है मेरी बात को, थोड़ा भी व्याकरण पढ़ा है, व्याकरण में थोड़ा गहरा उतरा है तो आरंभ का नहीं पकड़ पाता। तो कर्ण शुद्धि है, कर्ण नहीं है, खास जिज्ञासा है क्या ज्ञान क्रिया से होता है, क्या पदार्थ से होता है, क्या क्रिया है परमात्मा तत्वों में, ब्रह्म में क्रिया है, क्या पदार्थ है वह, क्रिया और पदार्थ ये सब प्रकृति का कार्य है, अरे प्रकृति से अति तत्व है, तो प्रकृति के कार्य के द्वारा तत्व तक पहुंच जाओगे, असंभव बात है, हो ही नहीं सकता है कभी। जिसमें भूल में बैठे हुए वही रहते वही करते कैसे हो जाए उस तत्व को, बहुत सीधा बहुत सरल तत्काल है। मुक्ति खुद की होती है, कर्ण की नहीं होती है, कर्ता की नहीं होती है, कर्ता कर्म से उठता है उसमें तत्व है, वो मुक्त है सदा ही, मुक्त ही मुक्त होता है, बद्ध मुक्त कभी हुआ नहीं, और बद्ध ही मुक्त होता है, मुक्त का मुक्त क्या होगा, ध्यान देना अटपटी बात है ये मेरी, फिर कहता हूँ सुनो ध्यान दे सुनो, बद्ध होता है वो ही मुक्त होता है, अरे बद्ध है ही नहीं मुक्त क्या होगा, एक बात। दूसरी बात, बद्ध मुक्त कभी होता ही हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, बद्ध कभी मुक्त नहीं होगा, सदा मुक्त है वही मुक्त होगा, आए ख्याल रहेंगे नहीं, कभी बद्ध हुआ ही नहीं, सदा मुक्ति शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वही मुक्त होता है, सदा सिद्ध है मुक्ति, मुक्ति क्रिया नहीं है, कोई कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल होगा अनित्य होगा, फल मात्र अनित्य होता है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, अप्राप्ति की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती, अप्राप्ति की प्राप्ति होगी तो फिर अप्राप्ति हो ही जाएगी किसी फिर समय पा करके, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है, इस वास्ते प्राप्ति क्रिया जन्य नहीं है, ये साधन जन्य नहीं है, ये उपाय जन्य नहीं है, ये स्वयं है, जन्य होता हो तो मरने वाला होगा, जो पैदा होता मरेगा, तत्व ज्ञान मरेगा कभी, कोई कह सकता है? यत्पाद पंकज शरणम बिना मे सन्नप्य सन्निपर पुरुष पुरासी, यत्पाद पंकज शरणादिदानी नासित न चासित न भविष्यति वेद बुद्धि, सर्वगुण संक्षेप सारिक बलिते, जिन गुरु महाराज की कृपा के आश्रय लिए बिना होता हुआ तो भी सन्नप्य सन्नियो पर पुरुष पुराशीत, परम पुरुष परमात्मा है ही नहीं ऐसा दिखता था, और चरणों की कृपा से वो कैसा हो गया कि नासित न शास्त्र न भविष्य न तो भेद बुद्धि है, न भेद बुद्धि होगी, न है नहीं हुई, न संभव है जो का त्यों है, वो खोया कैसो बावरे पाया कैसो कूर, पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर तत्व ये है, खोया कैसो बावरे पाया कैसो कूर, पाया गया है क्या नहीं पाया हुआ है क्या, तो बात ये है, पर इससे विचार करते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं, एक एक विचार से अंतःकरण शुद्धि होती है। इसका अर्थ ये मत समझना कि अंतःकरण शुद्धि को मैं उपाय नहीं मानता हूँ, उचित नहीं मानता हूँ, ये नहीं है। पर कर्ण के द्वारा ज्ञान नहीं होगा ये कहता हूँ बड़े जोर डंके की चोट पर, कोई पूछ लेना फिर आकर मेरे से, अब इस बारे में क्या कहोगे। कर्ण से ज्ञान होता है क्या, चाहे बहिकर्ण हो, चाहे इंद्रिया ज्ञान कर्ण हो, चाहे कर्तरणादि की कर्मेंद्रिया हो, चाहे चक्षुवादी ज्ञानेन्द्रिया हो, और चाहे मन मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण हो, ये बहिकरण है, अंतःकरण है। बहिकरण एक इंद्रिय है, कर्ण है, तो ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, बहिकरण है, और मन बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण है। तो कर्ण का कर्ण ही तो क्रिया सिद्धि में तो होता है कर्ण, तत्व की प्राप्ति में कर्ण सिद्ध नहीं होते। इसका अर्थ ये मत समझना कि अंतःकरण अशुद्धि होने से ज्ञान होता है, ये नहीं कहता हूं मैं। अंतःकरण की शुद्धि जरूर है, आवश्यक है, परंतु कर्ण के द्वारा ज्ञान कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, संभव नहीं है, ये जोर से कहता हूँ। प्रश्नों को पढ़ लेना, पंडित आकर मेरे को पूछ लेना। अरे कर्ण के द्वारा जो सिद्धि होगी वो असिद्धि हो जाएगी, फिर जड़ के द्वारा जिसकी सिद्धि होती है वो फल होता है, पर तत्व ज्ञान फल नहीं है, किसी क्रिया का किसी साधन का फल नहीं है, स्वतः सिद्ध है वो। फल नाशवान होता है, उत्पन्न होने वाला होता है, नष्ट होने वाला होता है, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ये स्वतः सिद्ध है। अज्ञान दूर होता है, अज्ञान दूर होने पर है जो रह जाता है वो, अज्ञान दूर होता है जड़ता दूर करने से। और ज्ञान जो होता है तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान खुद नहीं रहता है, अज्ञान का नाश करके स्वयं शांत हो जाता है, स्वरूप है जो रह जाता है। मेरी बात को याद करो, मानो तत्व ज्ञान जो है परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वो ज्ञान केवल अज्ञान का नाशक है, तत्व ज्ञान को पैदा करने वाला नहीं है। अज्ञान नाश होने से है जो उसकी प्राप्ति हो जाती है, तो तत्व ज्ञान होकर अज्ञान का नाश करके तत्व ज्ञान स्वयं खुद नष्ट हो जाता है या स्वरूप रह जाता है, ये बात याद कर लो। ज्ञानादेव तो केवल तत्व ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति होती है ना, वो तत्व ज्ञान क्या करता है, केवल अज्ञान का नाश करता है, ज्ञान पैदा नहीं करता है, बोध पैदा नहीं करता है, वो है ही। और पैदा होगा ज्ञान तो नाशवान हो जाएगा, जो पैदा होने वाली चीज होती है वो नाशवान होती है। पर क्या समझेंगे, समझ ही नहीं सकते। इस वास्ते भाई बहन कहना, आप उस तत्व ज्ञान को तो नित्य सबको स्वतः प्राप्त है, किसी को भी अपराध नहीं, कसाई से कसाई को भी तत्व ज्ञान नहीं, बोध अपना स्वरूप का बोध है, उसका अभाव नहीं है। तत्व जीवन मुक्त परमात्मा का प्रेमी उनको, और नीचे से कसाई महान हत्यारे उनसे भी बोध है, जो का त्यों है सब में, के वावण के कारण से नहीं होता है। अंतकरण के तीन दोष है, अंतकरण दोष अंतकरण निर्दोष हो जाए तो अंतकरण का तो ज्ञान हो जाएगा। मल वृक्ष आवरण है, वो कपड़ा है, वो बर्तन है, मिट्टी का घेर उसमें रहता है, ऊपर आवरण आ गया, दूर कर दो, जाल है, जाल ये इसमें उलझ जाते हैं आदमी, सीख लेते हैं, सीख कर ज्ञानी हो जाते हैं, बद्ध ज्ञानी होता है वो। अज्ञान को ज्ञान हो जाएगा, ऐसे बद्ध ज्ञानी को ज्ञान नहीं होगा। बड़ी विचित्र बात है, आप थोड़ा ख्याल करें। और परमात्मा की भक्ति है एक विचित्र बात है, एक इनसे विलक्षण बात बताऊं, क्या कहूं किसको कहूं। ज्ञान चीज है, जैसी वस्तु है वैसा का वैसा बोध हो जाने का नाम ज्ञान है, जैसा है वैसा का वैसा ही, नहीं पैदा नहीं होता है जैसा का जैसा ज्ञान। जैसे ये घड़ी है तो घड़ी का ज्ञान घड़ी है ऐसा ज्ञान, ये सच्चा ज्ञान है। इसको पत्थर समझाए तो ज्ञान ठीक नहीं है, इसको ईंट समझे तो ज्ञान नहीं है, घड़ी समझे तो ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। ऐसे यथार्थ बोध है, वो यथार्थ बोध है, वो यथार्थ तत्व का बोध है। रुपया है, ये काम की चीज है, बड़ी अच्छी है, रुपयों का एक ज्ञान है, इसमें एक विलक्षण बात है, जो कहने और सुनने के हम इतने अधिकारी नहीं है, ऐसी एक विलक्षण बात है। ज्ञान चीज है, वो अज्ञान को मिटा दे करके बोध रहता है, वो बोध है, वो बोध सब में रहते हुए भी जागृत क्यों नहीं हो रहा है कि ज्ञान है वह प्रेम नहीं है, आकर्षण नहीं है, प्रियता नहीं है। संसार के पदार्थों में आकर्षण है, ये बाधक है, पदार्थ बाधक नहीं है। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में जो आकर्षण है और महत्व बुद्धि है, ये बाधक है। जानते हैं जिसको नाशवान, जाने हुए असत्य का त्याग करना, ये तीज बात है, खास छोटी सी। आपके जाने हुए असत्य का त्याग करना है, जिसको आप असत्य जानते हैं, असत्य जानते हैं उनको महत्व देते हैं, ये महान बाधा है तत्व ज्ञान में। शरीर नाशवान है, रुपया नाशवान है, कुटुंब नाशवान है, ये रहने वाले नहीं है, ये नाशवान ऐसा मानते हैं और फिर इनके अधीन इसको महत्व देते हैं, मान आदर सत्कार को महत्व देते हैं। ये नाशवान का जो नाशवान को सच्चा मानना, सच्चा मानने की अपेक्षा भी उनको महत्व देना, उनका बड़ा भारी, उनका आदर करना, ये महान घातक है परमात्मा की प्राप्ति में, महान घातक, अत्यंत घातक, महान विरोधी। आदर मान हो तो मन राजी होता है, निरादर हो जाए, अपमान हो जाए तो नाराज हो जाते हैं, उसको ज्ञान हो जाएगा। आप किसी की शंका हो तो बोल, बीच में बोल जाओ, कोई परवाह नहीं, गहरी शंका बोलना, ऐसे उठपट नहीं बोलना, गहरा समझ लेना। ये कर्ण के द्वारा ज्ञान नहीं होता है। लेखनी से हम लिखते हैं तो लेखनी करण है, उसके द्वारा लिखना अच्छा हो जाएगा, कर्ण के द्वारा जो काम होता है वो तो ठीक हो जाएगा, जहाँ कर्ण का प्रयोग ही नहीं ऐसा हो जाएगा। साध्य और सिद्धि पुस्तक लिखा छोटा, उसको आप देखें, पढ़ें, खाल करें, अध्ययन करें उसका, और कर्म सापेक्ष, कर्म निरपेक्ष, कर्म निरहित, ये सब बातें बताइए उसमें। ये छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, उनको आप अध्ययन करें, देखें और गहरा उतर कर समझने का थोड़ा कष्ट उठावे, तो आपको पता लगेगा कि क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। साध्य क्या है हमारी, सिद्धि क्या है, साधक क्या है, साधक है, साधन है, सिद्धि है, इस बात को विचार करें, कृपा करें आप। भगवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ, इतना अलौकिक ग्रंथ है, बहुत वर्षों से मैं है गीता पाठ करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, फिर भी मेरे को बड़ी नई नई बातें, विचित्र विचित्र बातें मेरे को मिलती है, बड़ा संतोष होता है, प्रकाश मिलता है, प्रकाश दिन अंधेरे में बैठे दिन प्रकाश हो जाता है। ऐसी बातें गीता जी में भरी पड़ी है, उसको आप गहरे उतर कर समझो, ये भगवद गीता है, भगवान के वचन है, ऋषि मुनियों के वचनों से विलक्षण वचन है, भगवान के साक्षात भगवान के वचन, इतनी अलौकिकता उसमें भरी हुई है, जिससे बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, भगवत भक्ति हो जाएगा। कर्म योग स्वतंत्रता से परमात्मा प्राप्ति कराने वाला है, तत्व ज्ञान है वो स्वतंत्र प्राप्ति कराने वाला है, भगवान की भक्ति है स्वतंत्रता से परमात्मा प्राप्ति कराने वाले हैं। कर्मयोग का बड़ा अंतर कर गया, कर्मयोग क्या है, अंतकरण शुद्धि करता है, अंतकरण अशुद्धि के सिवाय और है क्या साहब, आप अंतकरण जहाँ मानते हो उनको शुद्ध कर्मयोग करेगा तो अंतकरण सर्वथा शुद्ध होगा, तो आवरण भी रहेगा क्या, मल भिक्ष आवरण, यही दोष है अंतकरण के, मल भिक्ष आवरण नहीं रहेगा, अंतकरण शुद्धि हो जाए तो बोध बाकी रहेगा। तो वास्तव में गहरा उतरो, इस बात को समझो, बड़ा लाभ होगा। पर सच्ची लगन हो तब तो पढ़ करके निश्चय करो, या निश्चय करो कि मैं मुक्त हूँ, निश्चय करो, निश्चय तो बुद्धि का होता है, निश्चय करने से मुक्ति होती है, निश्चय तो बुद्धि का होता है, बुद्धि का विषय तत्व ज्ञान है, और बोध स्वरूप आपका बुद्धि का विषय है। पढ़ने वालों के बुद्धि का विषय तो है ब्रह्म, बुद्धि का विषय है ईश्वर, बुद्धि का विषय है माया, बुद्धि का विषय है जीव। ब्रह्म ईश्वर जगत और जीव विचारों ही बुद्धि का विषय है पढ़ने वालों के लिए। बुद्धि का विषय है ब्रह्म, बुद्धि का विषय होगा तो भांग पी लिएगा। ब्रह्म बुद्धि का विषय, ईश्वर बुद्धि का विषय, जीव बुद्धि का विषय, प्रकृति बुद्धि का विषय, संसार बुद्धि का विषय। तो संसार को कह सकते हो ब्रह्म बुद्धि का विषय, ईश्वर बुद्धि का विषय, जीवात्मा बुद्धि का विषय है। ठीक है, बुद्धि बुद्धि में निश्चय करो, बोध हो गया। भ्रम होगा, भ्रम बाधा होगी, बाधा बद्ध ज्ञानी होंगे। बुद्धि से अतीत है तत्व, अहम है उससे अतीत है। नारायण नारायण नारायण, सच्ची जिज्ञासा हो तो इसमें आप गहरे उतरो, समझो, बहुत लाभ होगा। और नहीं तो आपकी मर्जी से क्या है। तो ब्रह्म ये विचार का विषय है, ऐसा लिखा चंद्रोदय में। तो ब्रह्म विचार का विषय है, विचार का विषय वो होता है जो कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, वो विचार का विषय होता है। जिसमें कुछ नहीं जानते वो तो श्रद्धा का विषय होता है, मानने का विषय होता है, बुद्धि का विषय नहीं होता। अधूरा ज्ञान होता है वो बुद्धि का विषय होता है। अधूरे ज्ञान का नाम ही अज्ञान है, अज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है। और तरह मान लिया और तरह, वो उसका नाम अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का अज्ञान कहते हैं। थम्भे को भी अज्ञानी कहना चाहिए, अज्ञानी है कि ज्ञान नहीं है, इस वजह से अज्ञानी है। कोई नहीं कहता पत्थर को अज्ञानी है, अज्ञानी उसको कहते हैं जो उल्टा ज्ञान है उसको ज्ञान मान रखा है। अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किंते न कृतम पापम चोरेण आत्मा पहारिणा है। और तरह दिखे और तरह, और तरह माने उसका नाम अज्ञान है। ज्ञान का अभाव का ना ज्ञान नहीं है। नारायण 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 नारायण। खास आप लोग शंका हो तो मैं पूछ लो, खास शंका हो मेरा विषय समझ करके उठ पड़ा हूं नहीं, मैंने बात कही समझ करके उस शंका हो। नारायण 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 दे दो, सोचने का।